अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी की आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी और साथ ही इन अष्टलक्ष्मी राज्यों की सुंदरता और गीत संगीत को भी हम शब्दों के माध्यम से महसूस करने का प्रयास करेंगे। तो आधे घंटे के इस सफर पर चलते हैं ये देखने कि पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक विरासत के साथ जीवन शैली में कितनी सहजता है, कितनी प्रकृति से निकटता है हम इसको महसूस करेंगे। तो आइए चले पूर्वोत्तर धारा। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए देश के अन्य सभी राज्यों की तरह ही पूर्वोत्तर के सभी अष्टलक्ष्मी राज्यों में भी मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं, प्रचार कार्य चल रहे हैं। अलग अलग दलों के नेता कहीं घर घर जाकर, कहीं रैलियां कर, कहीं बैठक और जनसभाएं करके प्रचार कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मतदान के लिए घर से वोट डालने की सुविधा यानी वोट फ्रॉम होम शुरू हो गई है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग मतदाताओं से पोलिंग टीम उनके घर तक जाकर उनका वोट लेकर आ रही है।
चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार फिजिकली डिजेबल्ड और 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई वोट फ्रॉम होम पहल को जनता से अच्छी सराहना मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रानी विलेज के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता 87 वर्षीय तामूर तातक ने सोमवार को अपने घर पर मतदान किया। असम राइफल्स के जवान के रूप में 1962 के भारत चीन युद्ध में भाग लेने वाले तामूर तातक ने वोट फ्रॉम होम की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग की सराहना की। भारत चीन युद्ध के दौरान एक ग्रेनेड उनके पास गिरने से वे बहरेपन और कई अन्य शारीरिक समस्याओं के शिकार हो गए। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफी उम्र होने के कारण उनका एक पैर काम नहीं करता है और साथ ही लोगों की बात उन्हें सुनाई नहीं देती, और अगर वो चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर जाते तो उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती।
मेरा नाम जो ताबो तक है, आज हम वोट दिया है, घर में बैठ के वोट दे के थोड़ा कुछ अच्छा लगा है। इधर उधर के पब्लिक तो नहीं मिला है, अपने घर में वोट दिया है, बहुत अच्छा लगा। पूरी इच्छा से मैं जाकर अगर हम वोट दिया होता आज हम लोग कितना तकलीफ होता था, कितना लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था, पर हमें नहीं सकता है, पैर खराब हो गया है, नहीं तो बहुत जगह में मेरा नहाने कितना तकलीफ होता था। आज हमका बहुत आसानी से अपने घर में वोट दे, बहुत खुशी हूँ।
अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में 19 अप्रैल को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव की मतगणना 2 जून और लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। मेरा केश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
इस साल हरित चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की हाल की घोषणा के अनुरूप राज्य निर्वाचन विभाग आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BDR तिवारी ने बताया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने और आगामी चुनावों को हरा भरा बनाने का फैसला किया है, क्योंकि मेघालय एक हरित राज्य के रूप में जाना जाता है। ये कहते हुए कि मौसम अब वृक्षारोपण के लिए बहुत अनुकूल है, उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में 2 पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं। ये बताते हुए कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पहले पुरुष और पहली महिला मतदाता द्वारा 2 पौधे लगाए जाएंगे। श्री तिवारी ने बताया कि उन्होंने पहले ही वन और पर्यावरण विभाग से पौधों की व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि मतदान दल पर्यावरण के अनुकूल बैग में पौधे अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में लगाए जाने वाले पौधों की देखभाल और रखरखाव शिक्षा विभाग करेगा। राज्य का चुनाव विभाग भी आगामी लोकसभा चुनाव में विशेषकर शिलांग निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ उपाय कर रहा है। ये मताधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए फुटबॉल मैच और स्वच्छता अभियान आयोजित करेगा। शिलांग में परंपरागत रूप से तुरा की तुलना में कम मतदान दर्ज किया गया है। श्री तिवारी ने कहा कि
वी वर्क आउट टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान कीपिंग द लो वोटिंग टर्न आउट पोलिंग स्टेशन एसीज एंड डिस्ट्रिक्ट। ट्रेडिशनली सी शिलांग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्लाइटली लेसर वोटिंग परसेंटेज इन कंपेयर टू तुरा एंड वी हैव ट्रेडिशनली लेस वोटिंग इन कंपेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। सो वी हैव वर्कड आउट ए वेरी इंटीग्रेटेड टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर पोलिंग स्टेशन वाइज एसी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज and we found the community involvement is the key to overcome this challenge. So our sweep strategy has been planned up to the grassroots level surrounding the polling stations. So for the community involvement to counter the youth apathy, now football is the most popular game and lot of sweep activities has been planned through the football. So our CEO office and district election officers are coming up and reaching to the different football clubs, taking youth and democracy together through football. Moreover, the community announcement system is called Usungat or Duldok in the Khasi Hill, Duldoka in the Garo Hill. We are engaging these community practices, announcement, etc. So, and appeal to the local communities, darbars and involving youth and different social organizations. So we are very sure and confident this voting percentage will increase in coming Lok Sabha elections. So all the sweep strategy up to the ground level we already has worked out. So music, football game, the community participation and moreover like very larger scale as these elections are being taken as the green election and clean election. So for the cleanliness, as there is a very well-known community practice of the cleaning drive in the different area. So pre-poll cleaning drive also we are taking up in the all polling stations. So at a time and post-poll also, because the cleanliness message of state of Meghalaya should pass on through these elections also. And similarly, in each and every polling station, we are going to plant two saplings by the first male and first female voter. So all needful arrangements are also being made. So we are just very much focused and dedicated. We sensitized all our teams for reducing the use of plastic as much as possible. Use reusable and multiple time usable carry bags, etc. So single use plastic are being maximum scale we are avoiding, even so garbage collection, its disposal and all other aspect related to the clean elections are also being taken up and being ensured.
चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव विभाग मतदान केंद्रों और निर्वाचन क्षेत्रों में एकीकृत मतदान कार्यान्वयन कार्यक्रम पर काम कर रहा है।
इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट टू गो फॉर अ मैसिव ट्री प्लांटेशन विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रिजर्विंग ऑफ द एनवायरनमेंट। द यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल्स ड्यूरिंग इलेक्शंस विल हेल्प टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस। At the same time, the efforts taken by the department to improve the voters' turnout, especially in the Shillong parliamentary seat, will bear positive results. This is Lamphang Nongspoon from AIR News Shillong.
उधर असम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य प्रचारक रैलियां कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठकें, जनसंपर्क और जनसभाएं और सारा प्रचार कार्य पूरे जोरों पर है। मिजोरम में इस बीच 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें राज्य भर के 1,276 मतदान केंद्रों पर 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अरुणाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ अरुणाचल प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया के सभी पक्षों का आकलन किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि स्थिति की समीक्षा के बाद निर्वाचन आयोग ने राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष बलों की अतिरिक्त 10 कंपनियां भेजी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती पहली बार की गई है। इस समय राज्य के विभिन्न जिलों में पहले से ही केंद्रीय बलों की 70 कंपनियां और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती है। उधर मिजोरम में 19 अप्रैल को ही मतदान होना है। इसमें राज्यभर के 1,276 मतदान केंद्रों पर 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बीच त्रिपुरा में भी निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए अपने प्रयास कर रहा है और प्रचार कार्य में तेजी देखी जा रही है।
In order to prevent any kind of violence or any untoward incident during election, the State Election Department has launched the Mission Violence Free Election 2024. Speaking on the occasion, Chief Secretary of Tripura, J.K. Sinha, said that elections which are considered as festival of democracy will be celebrated in a real manner when a time comes where there is no need of security force to conduct polls. He said the antisocial elements should be dealt with in a strictest manner.
Yeah, hum log ka dayitva hai. कि हम समाज के सभी तत्वों से ऐसा संवाद बनाएं, ऐसा संवाद स्थापित करें जो हिंसा रूपी जो तत्व है वो बाहर आए ही नहीं।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ रंजन सेड,
हमें मिलकर इंजीनियस मेथड से आउट ऑफ बॉक्स थिंक करके स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन इसे रोकना। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मार्च टिल टुडे वी हैड ऑलमोस्ट 2500 फ्लैग मार्च। एज वी स्पीक वन कंपनी इज डूइंग अ फ्लैग मार्च राइट फ्रॉम हियर टू कुमार घाट ऑन द नेशनल हाईवे and on the state highway, and this will happen every day, one on the north sector and one on the south sector.
DGP Intelligence Anurag said,
this election mein you have only 765 section of CAPF. Aapko apni ingenuities use karni hai ki kaise aap force ka presence show kare, force ka deployment kare aur kis tarah se peaceful election kare.
CEO Tripura Punit Agrawal said,
chunav mein kuch nahi रूल्स आ जाते हैं, कुछ नए इश्यूज होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, तो उन सबको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें एंश्योर करना है कि जितने वोटर्स हैं सभी मतदाता बिना किसी भय के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी लालच के वो भारी संख्या में जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहां पे जाएं और स्वेच्छा से वो अपना मतदान दे पाए।
कुणाल शिंदे फ्रॉम आकाशवाणी अगरतला।
निर्वाचन आयोग समय समय पर विभिन्न उपाय करता रहा है ताकि सभी लोग अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। बात मेघालय की। मेघालय में स्ट्रॉबेरी महोत्सव शुक्रवार को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना है।
द टू डे फेस्टिवल विच विल प्रोवाइड विजिटर्स एंड फार्मर्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रॉबेरी पिकिंग, साइकिल ट्रैकिंग अराउंड स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, फोक सॉन्ग एंड म्यूजिक अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी ड्रिंक्स। वर्कशॉप्स आर ऑल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द वेन्यू टू शो द मेथड ऑफ मार्केटिंग अदर लोकल बेवरेजेस एंड ट्रेडिशनल डिशेस। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी, शिलांग।
स्ट्रॉबेरी का फल बेहद स्वादिष्ट और रसीला होता है और इसकी रोपाई का यही उचित समय है। किसान बागवानी के लिए स्ट्रॉबेरी को उपजाने के लिए तैयार हैं। हम सभी को वैसे भी ये फल बहुत पसंद है। अपनी लहरदार पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और हल्का सा कल कल नाद करती नदियों और आकर्षक मनमोहक वातावरण के साथ देश के पूर्वोत्तर के राज्य अब दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुके हैं। ये सभी राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। पर्यटक यहाँ मन बनाकर आते हैं, साथ ही लंबी पैदल यात्राएं करते हैं और ट्रैकिंग के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी यहाँ के कुछ स्थानों को भी बेहद पसंद करते हैं। यहाँ पर जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में तथा ऐतिहासिक प्राचीन इमारतों को और मंदिरों के साथ ही बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों को सहज ही में देखा जा सकता है। यदि आप देश के इस पूर्वी भूभाग को देखने का मन बना रहे हैं तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रमुख जगहों के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहले सिक्किम की ओर चलते हैं। ये है सोमगो झील। सिक्किम में से चांगू झील भी कहा जाता है। करीब 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील का स्वरूप साल भर बदलता रहता है। जी हाँ, ये बहुत रोचक सा तथ्य है। और ये झील का किनारा वसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों से लंबे अरसे तक ढका रहता है, जबकि इसी जगह यानी इस झील पर सर्दियों के दिनों में पानी अपने आप ठोस रूप में जम जाता है। बौद्ध भिक्षुओं और सिक्किम के लोगों के पास इस झील के बारे में कई परंपरा से चली आ रही कथाएं और मिथक से भरपूर महत्वपूर्ण बातें भी हैं। अरे ये तो आपको बता दे कि आप यहाँ आकर याक की सवारी भी कर सकते हैं। याक की सवारी एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सर्दियों में जमी हुई झील पर याक की सवारी करना बहुत रोमांचकारी है और साथ ही ये जगह सभी के लिए एक सुंदर पर्यटन स्थल तो है ही। सोमगो झील तक आने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी होकर आना होगा, जो सोमगो झील से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सिक्किम के ही पेलिंग की ओर चलते हैं। ये क्षेत्र एक आकर्षक शहर कहा जा सकता है। पेलिंग राज्य के दूसरे सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल में आता है और इसका आकर्षण इसे बहुत अहम बना देता है। यहाँ कंचनजंगा और अन्य चोटियों का मनमोहक दृश्य इस स्थान का मुख्य आकर्षण है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और प्रसिद्ध पेमा यांगत्से मठ यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। इसके अलावा ये पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, ध्यान लगाना और शैक्षिक अनुसंधान के कई अवसर भी प्रदान करता है। सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए पेलिंग का सुरम्य गांव पूर्वोत्तर में पर्यटन स्थल के रूप में एक आदर्श स्थल तो अवश्य ही कहा जा सकता है। सिक्किम आए और यहाँ आकर गैंगटॉक न जाएं, ये कैसे हो सकता है। गैंगटॉक सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन है। गैंगटॉक अपने धुंध से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के साथ प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकर्स और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। भले ही आप एक अच्छे पर्वतारोही न हो, लेकिन फिर भी गैंगटॉक के आसपास की ढलानों पर टहलने से आप कंचनजंगा पर्वतमाला को भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे असम की ओर, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम चलते हैं। यहाँ 3001 सींग वाले गैंडे बचे हैं। उनमें से लगभग 2000 असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने के दौरान उन्हें देखना एक अनूठा अनुभव रहता है। अब यहाँ से हम आपको मेघालय में चेरापूंजी लिए चलते हैं, जो कई तरह की चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का रूट ब्रिज इसका मुख्य आकर्षण है। शहर के चारों ओर स्थित इन पुलों का निर्माण मानवीय सरलता और प्रकृति के लिए एक चमत्कार की तरह दिखाई देता है। इन पुलों पर चलना आपके लिए एक यादगार अनुभव रहेगा। मेघालय में शिलांग का अगर जिक्र करें, तो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये बहुत ही प्यारा शहर है। शिलांग अपने आकर्षक दृश्यों और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई करीब 1496 मीटर है और यहाँ तक पहुँचने वाला ये पहाड़ी शहर अपने सम शीतोष्ण वातावरण के कारण साल भर यहाँ पर एक बहुत सुंदर मौसम एक सार मौसम रहता है। कभी कभार होने वाली बूंदाबांदी और शीतल ठंडी हवा से इस हिल स्टेशन की यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। और एक बात और बताएं आपको, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले मूल रूप से क्यारी, मालीम, महरम, मलई, सुहमत, भुवाल और लैंगिंग जनजाति के वंशज हैं। अब हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की सूची में सबसे पहले जो नाम है वो है जीरो का। जीरो एक विशिष्ट जनजातीय समूह का जन्म स्थान कहा जा सकता है। यहाँ सुखद वातावरण और शांति से रहने वालों के लिए सुंदर आश्रय स्थल है। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के एक पुराने शहर जीरो को अपना घर कहती है। यहाँ चीड़ की पहाड़ियाँ हैं और चावल के खेत हैं। जीरो का मौसम साल भर सुखद रहता है, जिससे साल भर में आप किसी भी समय यहाँ आए वो यात्रा करना आपके लिए सुविधाजनक होगा। त्रिपुरा की बात करें तो हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा के एकमात्र महानगर अगरतला की ओर। पर्यटकों को अगरतला की शांत जीवन शैली और छोटे शहरों में रहने का आनंद यहाँ मिलता है। इस शहर में विशेष रूप से महलों और स्मारकों को अपने शानदार अतीत को दिखाने के लिए जाना जाता है। इसके हाथ से बुने वस्त्र और बांस के शिल्प दोनों ही के लिए प्रसिद्ध है। अगरतला में सभी के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। भले ही ये पूर्वोत्तर भारत में एक पसंदीदा अवकाश स्थल कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ रहते हुए आप स्थानीय व्यंजनों को अवश्य आजमा सकते हैं। अब हम रुख करते हैं मेघालय का। तो सबसे पहले बात करेंगे उमियम झील की। उमियम झील के रूप में जाने जाने वाला ये मनोरम कृत्रिम और मानव निर्मित जलाशय है, जो पूर्वोत्तर में मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग से करीब 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पनबिजली उत्पादन के लिए एक बांध बनने के बाद झील का यहाँ निर्माण किया गया। इस शांत झील का क्षेत्रफल अगर हम आपको बताएं तो लगभग 222 वर्ग किलोमीटर है और ये घने शंकु के आकार के पेड़ों से घिरी हुई है। इस झील का क्षेत्रफल इतना है कि इसे बरमुडा या सैन मैरिनो के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा कहा जाता है। ये सबसे सुरम्य पूर्वी खासी पहाड़ियाँ जो हरी भरी हरियाली से आच्छादित हैं, उनसे घिरा हुआ है। मेघालय आने वाले अधिकांश पर्यटक तस्वीर लेने और इत्मीनान से यहाँ नाव की सवारी करने के लिए उमियम झील पर अवश्य ही रुकते हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। हिमालय के भव्य प्राकृतिक स्थानों में से एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को जीवन रेखा प्रदान करता है सेला दर्रा और साथ ही उतनी ही दिव्य है सेला झील। दोनों मिलकर अपनी रहस्यमयी खूबसूरती से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पूर्वोत्तर के लिए प्रकृति के सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए एक वरदान की तरह है। ये राज्य के तवांग जिले को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। सेला दर्रा एक ऐसी सुंदर लुभावनी जगह है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और अपने भौगोलिक महत्व के अलावा पूर्वी हिमालय श्रृंखला के कुछ बेहद आश्चर्यजनक दृश्य और बेहद सुंदर मनोरम नजारे प्रस्तुत करती है। सेला झील अरुणाचल की सबसे आश्चर्यजनक झीलों में से एक है और ये पहाड़ी दर्रे में स्थित है। इसी तरह से हम जिक्र करना चाहेंगे नागालैंड का। नागालैंड का तोफेमा गांव एक विरासत गांव है, जिसे नागा लोगों की परंपराओं और जीवन के तरीके को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। ये कोहिमा से करीब ही स्थित है। यहाँ आकर आप एक जनजातीय आदिवासी झोपड़ी में एक रात अवश्य बिताएं और साथ ही यहाँ का जो स्थानीय भोजन है वो अवश्य करें और स्थानीय लोगों की कहानियाँ और गीतों को सुनने के लिए तोफेमा गांव में समय अवश्य बिताएं। ये जगह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है और इसी वजह से यहाँ कुल मिलाकर एक ऐसा आकर्षक वातावरण बन जाता है जिसको शब्दों में बयान करना कुछ मुश्किल है। ये आपको उत्तर पूर्व की भारतीय संस्कृति और जीवन शैली के आकर्षक पहलुओं की खोज करने, उनका अध्ययन करने का एक अवसर प्रदान करता है।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार्तीर्थ কত যুগ ধরি আহি সে প্রকাশি অমন্যয়র অর্থ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র মামিলানার তীর্থ কত যুগ ধরি আহি সে প্রকাশি অমন্যয়র অর্থ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র কন্ন কুবজরে পরা বর ভূঁয়া আহিছিলে দেবংশতে শংকৰ দেউ ইয়াতে জনমিলে।
इस बीच कार्यक्रम का समय समाप्त क्यों है? ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnhdtalks@gmail.com और आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है
9289094044।
और अब अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी।
লাচিতে শৰাই ঘাটতে কতৰু আগুচিলে জাতি ধৰ্ম ভাষা সবাকে সবে প্ৰেমেৰে বান্ধিলে বিৰাট পুত্ৰ বিষ্ণু ৰাবাই মাটিৰ সৃষ্টি দিয়ালে সমন্বয়ৰ দেখুৱালে কত প্ৰকাশত স্ফুট মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্র। পদ্মা নদীর ধুমুহাত পুরি কত কত জন আহিলে দুই তর দুই উপারে কত না অতিথি আদরিলে।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।